जब भीड़ में खोए हो और कोई अपनाए वही है, जब धूप में थोड़ी हवा चली ये पल हाँ वही है, और तुम कोई मीठी सी जो दिल छू जाए वही है, और फकीर को जब खुदा मिले ये पल
विशाल मंदिर में, जहां असंख्य भक्तगण आते थे, एक बहुत ही दरिद्र भोला भाला सा व्यक्ति रोज झाड़ू लगाता था, साफ सफाई का काम करता था। स्वभाव बहुत ही निर्दोष था, निरागस था। उसके मन में एक दिन विचार आया, भगवान की ये जो प्रतिमा है, ये जो मूर्ति है, भगवान निरंतर एक ही मुद्रा में खड़े रहते हैं, थक भी तो जाते होंगे। अभय वर मुद्रा भक्ति मार्ग में उसको कहते हैं, अभय वर मुद्रा। तो वो भगवान के पास, उस मूर्ति के पास जाता है और भगवान से कहता है कि आप कुछ दिन रेस्ट करो, आपकी जगह मैं खड़ा रहता हूं, यू नीड रेस्ट। कब से खड़े हो, हजारों लोग आते रहते, हजारों बातें सुनाते रहते, चुपचाप बैठकर सुनते रहते हो, थक भी तो जाते होंगे, तुम्हें आराम की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं, नहीं, यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज, बहुत मुश्किल काम है। वो कहता है, नहीं, मैं कर लूंगा, आपको आराम की ज्यादा आवश्यकता है। भगवान कहते हैं, ठीक है, पर जैसे मैं चुप खड़ा रहता हूं, तुम भी चुपचाप खड़े रहना, कुछ भी मत करना। वो कहता है, ठीक है। तो भगवान रेस्ट पर चले जाते हैं और वो भोला भाला सा झाड़ू लगाने वाला भगवान के स्थान पर भगवान बनकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर के बाद एक धनपति, एक बहुत अमीर व्यक्ति आता है, उसके हाथ में एक पैसों की झोली है। आते समय वो बाजू में एक कोने में वो झोली रखता है और भगवान के सामने करबद्ध होकर प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मुझे इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दे। प्रार्थना पूरी होती है और वो पीछे मुड़कर चला जाता है, ये भूल ही जाता है कि उसने वो थैली वहां एक कोने में रखी थी। थोड़ी देर के बाद एक गरीब व्यक्ति आता है, वो कहता है, प्रभु, कब तक परीक्षा लोगे, दिल से बहुत सच्चा है, अब तो कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ लूट गया, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, हे प्रभु कुछ कर। प्रार्थना पूरी करता है, अचानक नजर उस कोने पर जाती है, देखता है ये क्या है, खोलता है तो पैसे ही पैसे, खुश हो जाता है, प्रभु तूने सुन ली, भगवान जी अर्थात वो व्यक्ति जो बना बैठा है उसको लगता है कुछ बोलूं, परंतु अपने आप को रोकता है। थोड़ी देर में किसी नाव, किसी नैया, किसी शिप का कैप्टन वहां आता है। वो कप्तान भगवान से प्रार्थना कर रहा है। उतने में जो पहला अमीर व्यक्ति है जब बाहर जाता है, उसे पता चलता है मेरा वो बैग कहाँ है। मंदिर के सिक्योरिटी वालों को बताता है और वो सब अंदर आते हैं और सारा संशय इस पर जाता है कि इसी ने लिया होगा। और वो सिक्योरिटी वाले और वो अमीर आदमी उसको पकड़ लेते हैं, कहते कहाँ है वो थैला। वो चिल्लाते रहता है नहीं नहीं मेरे पास नहीं है, पर वो लोग बिल्कुल मानते नहीं और अब उसको पकड़ के लेके ही जा रहे हैं। अब हमारा जो भगवान था उससे अब नहीं रहा जाता, इतना अन्याय ये मैं नहीं सहन कर सकता। तुरंत जैसे आकाशवाणी की आवाज होती है और वो बोल पड़ता है, कहता है ठहरो मैं भगवान बोल रहा हूं। एकदम सन्नाटा, सभी हाथ जोड़े झुक जाते हैं और वो कहता है, भगवान कहते हैं कि चोरी इसने नहीं की है, इसके पहले जो भिखारी आया था उसने की है, जाओ उससे ले लो। वो अमीर आदमी और उस सिक्योरिटी वाले वहां से चले जाते हैं। बड़ा संतोष होता है भगवान जी को कि अच्छा न्याय किया। और फिर अपने ओरिजिनल रियल भगवान आते हैं, कहते हैं सब ठीक ठाक, कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा न्याय हुआ, कहीं बोले तो नहीं। वो कहते हैं नहीं बोलना पड़ा मुझे। क्या हुआ? वो सुनाता है, भगवान कहते ये तूने क्या कर दिया, मैंने इतनी अच्छी रचना रची थी, इतना अच्छा मेरी प्लानिंग था, तूने सब बिगाड़ दिया। भगवान वो कहता है कैसे, मैंने तो न्याय किया। भगवान कहते वो जो अमीर आदमी था केवल अपने लिए जीता था, उसके जो पैसे थे वो केवल वो खुद के लिए थे, दुनिया के लिए कुछ नहीं करता था। पर जो दूसरा जो था गरीब, वो वास्तव में गरीब था पर दिल का बहुत सच्चा था। अगर वो पैसे मैंने उसके लिए रखे थे, अगर वो पैसे उसे मिल गए होते तो उसका अपना भी पेट भरता, वो उन पैसों से जनकल्याण भी करता। तुमने बहुत गलती कर दी। वो व्यक्ति कहता है वो तो ठीक है, पर वो जो कप्तान था उसका क्या, वो तो उसके साथ तो अन्याय हो रहा था। भगवान कहते हैं कि मेरी तो प्लानिंग ही थी उसको जेल में डालने की, क्योंकि जिस लंबी यात्रा पर वो जाने वाला था, वो जो शिप थी, वो जो जहाज था, वो कुछ ही दिनों में डूबने वाला था और मुझे उसे बचाना था। ये डिवाइन प्लानिंग थी, तुमने गड़बड़ कर दी सब। ये ड्रामा विराट है, द डिवाइन प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी है। मैं क्या कर रहा हूं, मेरा जीवन कैसे चल रहा है, जो संघर्ष है, जो उलझन है, जो तनाव है, जो खींचतान है, वो शायद इस प्लान के खिलाफ हमारा मन काम कर रहा है, इसलिए हम हलचल में हैं। क्या हम करें जो इस ड्रामा को एंजॉय कर सके? शायद भारत ही ऐसा देश होगा विश्व भर में जिसने इस विश्व को लीला कहा, द डिवाइन शो, नाटक। और किसी धर्म ने, किसी देश के किसी धर्म ने ये नहीं कहा कि ये लीला है। कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है। अगर इस लीला को, इस ड्रामा को देखते हुए निरंतर खुश राजी सुबह की मुरली रहना है, तो एक सबसे शक्तिशाली अभ्यास है और वो है साक्षी भाव। हजारों धर्म है संसार में, परंतु सभी धर्मों में एक बात कॉमन है और वो है साक्षी की अवस्था। ऐसे कुछ फिलोसॉफीज, कैसी कुछ फिलोसॉफीज संसार में आई जो भगवान को नहीं मानती है, परंतु वो भी साक्षी भाव को जरूर मानती है, विटनेस। कुछ कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जहां पर भगवान एक विधि है, नहीं भी रहा तो भी संपूर्णता को पाया जा सकता है, धर्म की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचा जा सकता है। भगवान एक यंत्र मात्र, एक उपकरण है। बुद्ध और महावीर ने भगवान को नहीं माना, परंतु हाँ, उन्होंने भी साक्षी भाव को माना है। और जब भगवान स्वयं धरती पर आए, जब बाबा इस धरती पर आए, हजारों मुरलियां है जिसमें साक्षी भाव, साक्षी दृष्टा का वर्णन है। अगर इस ज्ञान में साक्षी भाव न होता तो शायद ये ज्ञान भी अपूर्ण होता। तो आज इस सत्र में हम ये देखेंगे कि साक्षी भाव का अभ्यास कैसे किया जाए। ये हम सभी को पता है, ड्रामा रिपीट होता है, ड्रामा में नथिंग न्यू है, ड्रामा भगवान को पसंद है, ड्रामा से रिलेटेड संबंधित जितनी बातें हैं कई बार हमने सुनी है, परंतु सुनना एक बात है, समझना एक बात है। ये बुद्धि विलास हो सकता है, वाणी विलास हो सकता है, परंतु अनुभव कुछ और चीज है। समझा है, जाना भी है, परंतु शायद वो गहरा अनुभव अब तक नहीं है। इससे पहले कि हम साक्षी के वो सप्त द्वार, सेवन डोर्स की चर्चा करें, इस भट्टी की शुरुआत का दिन है आज। यदि चाहते हैं कि यह भट्टी बहुत सफल हो जाए तो दो काम करने पड़ेंगे। कईयों ने किए होंगे, पर जिन्होंने नहीं किए वो आज 10 बजे तक वो काम करने। बिना उन दो काम किए ये भट्टी सफल नहीं होगी। पहला, संपूर्ण मौन। बातचीत करते करते तपस्या नहीं होती, आर्य मौन। आपस में बात करना बंद 5 तारीख 9 सुबह 9 बजे तक। नो कम्युनिकेशन, नो टॉक्स, क्योंकि हमें मन का बहुत गहरा ऑपरेशन करना है। और जब ऑपरेशन होता है पेशेंट बात नहीं कर सकता, एक अलग कमरे में होता है, बाहर रेड लाइट। यहां तो मन का ऑपरेशन करना है, चीरा मन पर चलाना है। पता नहीं क्या निकलेगा, किस जन्म की घृणा, किस जन्म का बचपन का संस्कार, कौन सी कामवासना अंदर छिपी है, कुछ पता नहीं, कौन सा मवाद, क्या निकलेगा। और ये एक अवसर मिला है, बहुत डीप सर्जिकल ऑपरेशन है, इतना गहरा, इतना बड़ा काम करना है, कीमत चुकानी होगी। कोई भी बात नहीं, एब्सोल्यूट साइलेंस। जो नियोजक है, जिन्हें देखभाल करनी है, कार्यकर्ता है, संयोजक है, हाँ वो थोड़ी बहुत जो बात करेंगे करेंगे, पर जिन्हें केवल तपस्या करनी है, बैठे हुए हैं, जिन्हें आयोजन नहीं करना है, उनके लिए पहला नियम है कोई कम्युनिकेशन नहीं। दूसरा, मोबाइल बंद। जो बात करनी है आज 10 बजे तक बात कर लो, मोबाइल बंद होगा, ना साइलेंट मोड, ना वाइब्रेट मोड, ना फ्लाइट मोड, किसी भी मोड पर नहीं, स्विच ऑफ, मोबाइल खोलेंगे 9 बजे 5 तारीख को. दीज आर द टू रूल्स ऑफ द गेम. कोई भी डिजिटल डिस्टर्बेंस यहाँ नहीं होना चाहिए, तो ही ये बहुत गहरा काम है और काम बहुत बड़ा है. इस जन्म की ही इतनी बातें हैं, परते पर परते, परते परते परते, कितनी परते, सारे दिन भर जो हम करते हैं उसके संस्कार बन रहे हैं, उसकी यादें, वो घटनाएं, और वो संस्कार रूप में छिपी है और हमें खबर ही नहीं. और जहां हम काम करते हैं, जहां हम रहते हैं, वहां वो बनते जाते हैं, बनते जाते हैं. इस तरह का अवसर कभी नहीं मिलता, इस तरह के वायुमंडल में कभी आने को नहीं मिलता. ये तो एक अवसर मिला है, ड्रामा ने चांस दिए, नियति ने एक अवसर दिया है. नए वर्ष की शुरुआत मधुबन में हो रही है. अगर अब भी इससे बात करो, उससे बात करो, जिससे बात करना है आज रात कर लो, उनको बता दो कि मेरा मोबाइल अगले 3 दिन बंद है. ये 2 सबसे मुख्य रूल. आपस में कोई भी अनुभव की लेन देन नहीं, कोई भी चर्चा नहीं, कोई भी डिस्कशन नहीं, क्योंकि हमें अपने अंदर घुसना है. गहराई में बहुत काम पड़ा हुआ है, इतनी सारी चीजें करनी बाकी है. और एक नियम, इस कैंपस से बाहर कहीं नहीं जाना है, ना किसी से मिलना है, ना किसी डिपार्टमेंट, ना हॉस्पिटल, ना ये करूं ना वो करूं, ना कुछ खरीदना है, कुछ नहीं. अपना कमरा, क्लासरूम, मुरली क्लासरूम, बाबा का कमरा, डाइनिंग, बस. भोजन भी आर्यमान, एक बार जितना लेना है ले लो, नीचे देखकर, उस थाली में देखकर, बस. कौन क्या खा रहा है, कौन क्या कर रहा है, नथिंग. क्योंकि इतने वर्षों का काम पड़ा हुआ है, एक वासना छिपी है अंदर, उसको निकालना है. वो तो दिखाई नहीं देती, इतनी गहरी है, हाथ तक नहीं पहुंचता वहां तक, और वो सताती रहती है, हलचल उत्पन्न करती रहती है. एक संबंध जीवन का ऐसा जोड़ा है जो अनैतिक है, जो ज्ञान के विरुद्ध है, पर वो चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है. अब अवसर मिला है, इतना बड़ा काम, कुछ तो करना होगा. और जिनको नहीं करना है, तो ये समझे कि दूसरे का ऑपरेशन चालू है. ऑपरेशन थिएटर के पास लिखा रहता है साइलेंस. दूसरा बेचारा पता नहीं कहां अंदर पहुंचा है ऑपरेशन करते करते, और हमने उसको वाचा में लाया. और कैसी चल रही है तुम्हारी तपस्या? ना हम वाचा में आए, ना किसी को वाचा में लाए. इतना गहरा जब मौन होगा तो कुछ मिलेगा. इतनी बड़ी प्राप्ति अगर चाहिए तो त्याग भी उतना ही बड़ा करना होगा. और हम कह रहे हैं केवल 9 बजे खोल देना, ऑन कर देना मोबाइल, और यहीं पर बात करके जाना. मौन भी इसी कैंपस में टूटे, ये भी एक नियम है, इसी कैंपस में तोड़ के जाना मौन को. और वो जो मौन को तोड़ेंगे उसमें ज्ञान की चर्चा तो से तोड़ना कि हमने ये अनुभव किया. सीधा उधर नहीं, इधर. अब करना क्या है? साक्षी, निस्संग, डिटैच, ऑब्जर्वर, दर्शक, देखना. हमारी यात्रा स्थूल से सूक्ष्म की है. यदि हम कहें कि बस साक्षी होकर सब कुछ देखो, ये तो हमने कई बार सुना है, पर यह होता नहीं है. इसके लिए हम कुछ सूक्ष्म, पहले स्थूल बातों की चर्चा करते करते सूक्ष्म तक आएंगे. हमारा अभ्यास पहले स्थूल होगा, फिर सूक्ष्म. और जो प्रैक्टिस यहाँ करेंगे, यहाँ से जाने के बाद वो प्रैक्टिस करते रहना है, करते रहना है, करते रहना। केवल बुद्धि के तल पर समझ लेना, उससे कुछ नहीं होगा। आज की मुरली, सुबह की साकार मुरली, तुम्हारा पेपर कौन चेक करेगा? तुम खुद चेक करोगे। तो साक्षी स्थिति बहुत ऊंची अवस्था है। कैसे पहुंचे, किन चीजों का आधार लिया जाए? तो ऐसे हम सात आधार लेंगे, या सात द्वार है। सबसे पहला द्वार श्वास, ब्रेथ। साक्षी होकर अपने ही श्वास को देखना, और ये अभ्यास करने से पहले हम ये नहीं कह रहे कि ये योग के प्रयोग है। योग आप तो करते ही है या फिर कराते हैं, योग के बारे में बहुत सबको पता है, पर आज हम जो प्रयोग कर रहे हैं ये कुछ और है। ये सारे प्रयोग हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में छिपे हुए जो विकार है, हम उन्हें देख पाएंगे। तो सबसे पहला अभ्यास श्वास। उस अभ्यास के लिए एक चीज की आवश्यकता है, वो है स्थिर शरीर। तो सभी स्थिर होके बैठेंगे, और जब हम कह रहे हैं स्थिर, तो ये अभ्यास अभी तो सब सोफा पे बैठे हैं, पर यहां से जब घर जाएंगे तो ये अभ्यास जमीन पर बैठ के करना है। ट्रिपल लॉक, पहला पैर लॉक, दूसरा हाथ, जहां हाथ रख दिया बस वहीं रहेंगे, फिर उनको जरा भी नहीं हिलाना है, पेन पेंसिल डायरी सब बाजू में, और रीढ़ की हड्डी सीधी एकदम, जैसे कोई तपस्वी, जैसे कोई योगी बैठा हुआ है, अचल अडोल, जरा भी हलचल नहीं शरीर की। जितना शरीर अचल होगा उतना मन स्थिर होगा। जहां शरीर आरामदायक स्थिति में बैठा होगा वो तपस्या की मुद्रा नहीं है, तपस्या अर्थात जैसे योगी बैठता है उस अवस्था में बैठना है। और तीसरी शर्त आंख बंद। तो सभी बैठेंगे क्रॉस लेगेड, जितना बैठ सके। जो नहीं बैठ सकते, जिन्हें असहनीय वेदना होती है, वो चाहे किसी भी मुद्रा में बैठे, परंतु हर मुद्रा में कमर सीधी हो। अब सबसे पहला अभ्यास जो है वो है श्वास को देखना। ये जो श्वास है इसके साथ कुछ भी जोड़ना नहीं है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कुछ भी नहीं जोड़ना है, शुद्ध श्वास को देखना है। श्वास आया गया, आया गया। श्वास को देखते देखते एक दिन अपने विकारों को देखने लगेंगे, श्वास को देखते देखते एक दिन चेतना के अंदर छिपे हुए वासनाएं दिखाई पड़ने लगेगी, श्वास को देखते देखते इस शरीर को समझने लगेंगे, शरीर है क्या, कैसे श्वास, क्रोध आता है तो कैसी गति बढ़ जाती है, काम वासना जगती है तो कैसे श्वासों में परिवर्तन होता है। श्वास को देखते देखते विकारों को परिवर्तन कर देंगे। तो सभी अलर्ट स्थिर, उंगली भी न हिले, हाथ जो रख दिया वो रख दिया। श्वास आ रहा है, जा रहा है। मैं साक्षी हूं। कभी दाएं नासिका से, कभी बाएं, कभी दोनों। कोई प्रतिक्रिया नहीं, केवल देख रहा हूं। संपूर्ण ध्यान दोनों नासिकाओं पर। अनुभव करेंगे श्वास का स्पर्श। कितना अंदर जा रहा है और कितना बाहर। केवल श्वास की गति पर ध्यान। श्वास को देखते देखते ही शरीर विस्मृत हो रहा है। ओम शांति। अपनी आत्मा तक पहुंचना है, उसमें छिपे विकारों तक पहुंचना है, उन विकारों को देख लेना है, श्वास को देखना। और यह अभ्यास अलग अलग समय पर करना, दिन भर में कहीं पर भी किया जा सकता है, जब भी समय है, चेयर पर बैठकर, अन्यथा दोपहर का समय सबसे अच्छा समय है, जहां पर बैठो और केवल देखो। पता चलेगा मन कितना अस्थिर है, 2-3 श्वास को देखने के बाद ही भागता है अतीत में, कभी भविष्य में, कितना अस्थिर है ये मन। जंगली हाथी है, पालतू बनाना है, डायरेक्ट अटैक नहीं किया जा सकता है, अवलंबन आलंबन लेना पड़ेगा कुछ और चीजों का। और ये निर्विकार अवस्था है, श्वास आ रहा है तो कोई सुख नहीं, जा रहा है तो कोई दुख भी नहीं, ये निर्मोही अवस्था है चेतना की। उसको देखते देखते ही एक स्थिर अवस्था में हम पहुंचते हैं। यह पहला अभ्यास है साक्षी का, यह साक्षी का पहला द्वार है श्वास। दूसरा द्वार शरीर, फिर से इसमें ट्रिपल लॉक, एकदम स्थिर बैठना, जितना हो सके पीछे कोई सपोर्ट ना हो, और जबान भी ना हिले, इतनी स्थिरता। आंखें बंद होगी और इसमें क्या करना है, ऊपर से लेकर तो पांव तक अपने शरीर का अवलोकन करना है, देखना है कौन सी संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है, कहां भारीपन है, कहां हल्कापन है, कहां स्थूल संवेदनाएं, कहां सूक्ष्म संवेदनाएं, कहां पर पुलकन, कहां धूजन, कहां जलन, कहां पर खुजली। परंतु करना कुछ नहीं है, केवल शरीर को ऊपर से नीचे तक देखना है, और एक ही क्रम से देखना है हमेशा, एक भी इतना सा इंच मात्र भी शरीर का अंग ना बचे। ऊपर से शुरू हम करेंगे, सिर के सिरे से चेहरे पर एक आंख, एक एक जगह पर अपने मन को ले जाएंगे, फिर गर्दन, फिर दाया हाथ, फिर छाती, फिर पेट, फिर बाया हाथ, फिर पीठ, और फिर दाया पैर, बाया पैर। ऊपर से नीचे तक अपने मन को शरीर पर घुमाना है। ये सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है, क्योंकि शरीर में 2 प्रकार की संवेदनाएं हैं, एक सुखद एक दुखद। जहां सुखद संवेदना है वहां पर राग उत्पन्न होता है, और जहां दुखद संवेदना है वहां पर द्वेष उत्पन्न होता है। बहुत दर्द हो रहा है पैर में, केवल देखना है। बहुत सुन्न हो गया है, देखना है। खुजली हो रही है, ऐसा लगता है अभी खुजली करूं, कुछ नहीं करना है, देखना है शरीर को, सिर के सिरे से पांव तक साक्षी होकर देखना है, निस्संग होकर देखना है, अनासक्त होकर देखना है। जिसने शरीर को देखा वो अनित्य, ये शरीर जो है अनित्य है, अनित्य के चिंतन से चेतना नित्य की ओर जाएगी अपने आप। शरीर का जो भान है, शरीर में जो विकार है, जो उत्तेजनाएं है, द अर्जेस, उस पर धीरे धीरे काबू आएगा। कुमार भाई बहने कितना अभ्यास करते, कितना पुरुषार्थ करते, कैसे ब्रह्मचर्य करे, परंतु क्यों टूट जाता है कहीं कहीं? क्योंकि काम वासना साइकोसोमैटिक है। हम मन से शरीर को वश में करने का प्रयास कर रहे हैं, सारा जीवन निकल जाता है पर हो नहीं पाता। यात्रा हम अभी थोड़ी दूसरी कर रहे हैं, देह से आत्मा की ओर जा रहे हैं। कुछ और हो जाएगा, एक भी अंग ना छूटे। अधिष्ठान कहते हैं इसे, एक मुद्रा में बैठ जाना इतना स्थिर जैसे कोई पर्वत हिम शिखर बैठा है। योगी जब ऐसे बैठते थे तो कोई पहलवान भी आ जाए और उनको उठाने की कोशिश करे नहीं उठा पाते थे, और जब उठते थे योगी खुद फूल की तरह उठ जाते थे। कैसी पावर थी, क्या योग बल था वो, कैसी शक्ति थी वो। कॉन्सेंट्रेशन आज की मुरली में वरदान, कनेक्शन रिलेशन कॉन्सेंट्रेशन साइलेंस पावर, जैसे कर्म की शक्ति है, जैसे वाणी की शक्ति है, वैसे साइलेंस की शक्ति है। दूसरी आत्माओं को अनुभव करा सकोगे, दूसरी आत्माओं को समीप का अनुभव करा सकोगे, उनका आह्वान कर सकोगे, परंतु इसके लिए लास्ट लाइन वरदान की एकाग्रता की शक्ति बढ़ाओ। ये एकाग्रता है, ये स्वराज्य अधिकारी अवस्था है। हम मन को कह रहे हैं मन जा पैर की ओर, वो जा रहा है। मन को शरीर से ऊपर से नीचे तक घुमाना है। सभी स्थिर होके बैठेंगे, अधिष्ठान एक मुद्रा में, हाथ जो रख दिया वो रख दिया, उंगली भी ना हिले, इतनी स्थिर अवस्था। स्टार्ट। सिर के सिरे को देख रहा हूं, अब मन को चेहरे की ओर लाना है। कौन सी संवेदनाएं चेहरे पर है? What sensations? तनाव है, केवल देख रहा हूं। कहीं सुखित सुखद संवेदनाएं, सुखद के प्रति लगाव नहीं, दुखद के प्रति द्वेष नहीं, साक्षी। गर्दन की ओर, दाएं हाथ का निरीक्षण, हो सकता है किसी किसी अंगों में कोई भी संवेदना ना हो, आगे बढ़ जाओ। कहीं दर्द हो रहा है, रुक जाओ कुछ पल, फिर आगे बढ़ो। कहीं खुजली, आगे बढ़ो। छाती, पेट, बाया हाथ, कंधा, कोहनी, कलाई, पंजा, उंगलियां, हाथों का हाथों से स्पर्श, कपड़ों का स्पर्श, पीठ। मन को घुमाना है, दाया पैर, क्या हो रहा है वहां पर? ठंड, गर्मी, पसीना, क्या हो रहा है? केवल देख रहा हूं। बाया पैर ऊपर से नीचे तक, शरीर के जो अंग छूट गए मन को वहां ले जाना। Thank you. फिर से श्वास की तरफ। ओम शांति। जिसने देह को देख लिया वो देह से मुक्त होगा। जिसने देह की संवेदनाओं को साक्षी होकर देखने का अभ्यास कर लिया वो विकारों से धीरे धीरे मुक्त होते जाएगा। ये देह अनित्य है, अनित्य के चिंतन करते करते नित्य की ओर यात्रा होगी। देह की कुछ अंग मूर्छित पड़े हैं, हम उनको देखेंगे क्योंकि वो उत्तेजित किसी विकार की अवस्था में ही होते हैं। उन्हें अनुत्तेजित अवस्थाओं में यदि देख लिया जाए तो विकारों से मुक्ति हो सकती है। साक्षी का दूसरा द्वार देह को देखना। इस अभ्यास को दिन में जब भी समय मिले एकांत में बैठ के अलार्म लगा दो आधा घंटा। जब तक आधा घंटा नहीं होगा आंख खोलेंगे ही नहीं। मन स्थिर होते जाएगा। तीसरा अभ्यास साक्षी का तीसरा द्वार मन या चित्त या बुद्धि को देखना। जिसने देह की संवेदनाओं को साक्षी होकर देखने का अभ्यास कर लिया अब धीरे धीरे मन को साक्षी होकर देखना है। जैसे किसी सड़क पर हम खड़े हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, गाड़ियां आ रही है गाड़ियां जा रही है, वो विचार है। हम कुछ नहीं कर रहे, बहुत अच्छा विचार आया तुरंत कुछ नहीं करना देखते रहना। खराब विचार आया, विकार का विचार आया, एकदम घृणा उत्पन्न होती है और हम फिर नीचे गिर जाते हैं। मैं मट्टी में आया हूं फिर भी मन में ऐसा विचार आता है, ये विचार इतना खराब विचार मेरे मन में, इतना खराब स्वप्न, यहां आने के बाद भी इस वायुमंडल में भी एकदम दुखी हो जाते। ना दुखी होना है बुरे के आने से, ना प्रसन्न होना है अच्छे के आने से। आज स्वप्न में बाबा दिख गया, 10 लोगों को बताते फिर रहे, क्यों? कहीं राग कहीं द्वेष, कहीं राग कहीं द्वेष, इसी में चेतना फंसी है। ना राग, किसी ने बहुत अच्छी बातें की, किसी ने हमारी स्तुति की, उससे दोस्ती हो जाती है, वो अच्छा लगता है, राग उत्पन्न हो गया। किसी ने हमारी ग्लानी की, किसी ने हमारी निंदा की, कोई पीठ पीछे हमारी ग्लानी कर रहा है, कोई हमारे खिलाफ झूठी बातें बता रहा है, आरोप लगा रहा है, एकदम उस आत्मा के प्रति घृणा भाव उत्पन्न होता है। ना घृणा ना राग, ना आकर्षण ना विकर्षण, लाइक्स डिसलाइक्स, बस जिसने इन दोनों को जीता, देखना है बस, करना कुछ नहीं है। कोई भी विचार आ रहा है, जैसे नदी के तट पर बैठे नदी का पानी बह रहा है, हम देख रहे हैं। ये अभ्यास भी जब भी समय मिले दिन भर में बैठ जाओ और देखो 10 मिनट मेरे मन में क्या विचार आ रहे हैं, कौन से संकल्प चल रहे हैं। करना कुछ भी नहीं है, केवल देखना है बस। फिर से स्थिर अधिष्ठान। अगले 3 मिनट तक ये भी नहीं कि मैं आत्मा हूं, आत्मा कहीं भागी नहीं जा रही है, वो वही है। बोलने की भी आवश्यकता नहीं, केवल जैसे मैं झाड़ हूं पक्षी है, एक एक विचार आ रहा है जा रहा है, और हर विचार अनित्य है अनश्वर, थोड़े देर के लिए है बस, नश्वर है, चला जाएगा। अभी अभी योग करने जा रहे हैं, कोई कहता है चलो हम सैंडविच खाते, बस उधर चले गए। कोई कहते हैं वो करो, उधर चले गए। अचानक कोई विचार आ गया, बहुत अच्छे विचार, अचानक एक विचार आ गया, तुरंत भोग रहे उसको। विचारों को भोगना नहीं है, भोक्ता भाव और साक्षी भाव। विचार आएगा, आने दो, चला जाएगा। अच्छा हो या बुरा हो, कोई भी हो, मुझे केवल देखना है। स्टार्ट। फिर से ट्रिपल लॉक। मैं देख रहा हूं, अतीत की ओर जा रहा है या भविष्य की ओर, कौन से विचार आ रहे हैं। बचपन से हमने अपने मन में गांठें उत्पन्न की है, इन गांठों को खोलना है। वो गांठें कब बांधी गई हमें पता नहीं। यहां तक कि मनोवैज्ञानिक कहते हैं जो वर्तमान में शरीर की बीमारियां है उनका उद्गम अतीत में है कहीं ना कहीं। किस समय वो गांठ बांधी गई, किस समय ये मोह का बंधन उत्पन्न हुआ, किस समय ये विकार उत्पन्न हुआ, कब से ये काम विकार की यात्रा मन के तल पर चालू ही पता ही नहीं, जो आपकी कड़ा संस्कार बन गया है। इस भट्टी का एक लक्ष्य है निर्ग्रंथ हो जाना, जो गांठें बांधी है गांठों को खोलना है। गहरा ऑपरेशन है, बहुत डीप ऑपरेशन है, और हर एक ऑपरेशन कर रहा है, किसी के ऑपरेशन को डिस्टर्ब नहीं करना है। हमें ऐसी ऐसी जगह चीरा लगाना है जहां अंधकारमय कोठरी है, आज तक कभी प्रवेश नहीं किया वहां तक, आज तक उसके बारे में सोचा ही नहीं और वो पनप रही थी, वहां चीरा लगाना है, पता नहीं क्या निकलेगा वहां से। देख लेना, देखना ही मुक्ति है। अपने विकारों को जिसने देख लिया वो मुक्त हो जाएगा। चौथा द्वार संस्कार या आदत या एडिक्शंस। अपने एडिक्शंस को साक्षी होकर घृणा नहीं रखना उसके प्रति, इतना मैं पवित्रता में चलता हूं, इतनी ब्रह्मचर्य की पवित्रता धारण किए, फिर भी ये कहां से एडिक्शन हो गया, कब चालू हुआ ये एडिक्शन। अपने एडिक्शंस को, अपने संस्कारों को, अपनी आदतों को भी साक्षी होकर देखना है। घृणा भाव नहीं, बहुत प्यार का भाव नहीं, कितनी अच्छी आदत है, मैं तो बहुत अच्छा अमृत वेला करता हूं, ये भी नहीं, मैं तो बहुत अच्छा ज्ञान चिंतन करता हूं, ये भी लगाव है, मैं तो बहुत अच्छा लिखता हूं, मैं तो बहुत अच्छी सेवा करता हूं, इधर भी नहीं इधर भी नहीं, बीच में खड़ा हूं। इस जीवन में बचपन से लेकर अब तक जो सबसे कड़ी आदतें हैं, सबसे कड़े संस्कार है। अगले 2 मिनट हमारे पास समय कम है, ये काम आपको हर दिन करना है। एकांत में बैठ जाओ और देखो, केवल देखना, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हम देख ही नहीं रहे उनको। देखते 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 देखते, दिस इज द पाथ टू एक्सेस सबकॉन्शियस माइंड, नहीं तो हम सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचते ही नहीं है। उसमें बहुत कुछ है, हम जो कुछ भट्टियां कर रहे हैं, जो कुछ सेवाएं कर रहे हैं, ज्ञान योग धारणा सब कुछ ऊपर कॉन्शियस में हो रहा है, वो नीचे कुछ भी नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच एक बहुत मोटी दीवार है। कैसे तोड़े इस दीवार को और कैसे अंदर प्रवेश करे, यही मार्ग है साक्षी। फिर से स्थिर इस जीवन की ऐसी उन आदतों को देखना है जो बहुत गहरी है। विकारों से संबंधित या फिर ज्ञान से संबंधित, और पीछे कब चालू हुई है, वो कौन सा पल था, वो कौन सी घड़ी थी, शायद बचपन में कभी, सारा जीवन बाह्य मुक्ता में चला गया। अंदर की गहराइयों को छुआ ही नहीं। पता नहीं ये क्या क्या कैसे कैसे सब बन गया। दूसरों को भगवान को मिलाने की दौड़ में मैं अपने आप से दूर निकल गया हूं। ओम शांति। पांचवा द्वार, अपनी दिनचर्या। अपनी दिनचर्या को साक्षी, क्योंकि दिन भर में जो घटनाएं होती है तब हमारे पास समय नहीं होता है अपने आप को साक्षी हो देखने का। इसलिए रोज रात को सोने से पहले जब बिस्तर पर लेटे हुए हैं अपनी दिनचर्या को याद करना है। और इसमें एक बहुत 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 सूक्ष्म नियम है, सुबह से रात तक नहीं आना है, सामने से पीछे जाना है। ये जो गांठें हैं बंधी है, काम की, क्रोध की, घृणा की, नफरत की, किसी से इतना लगाव है, दोनों ही ज्ञानी है, दोनों ही तपस्वी है, पर दोनों में इतना लगाव है, एक आकर्षण है, शायद किसी और जन्म का भी होगा पर आकर्षण तो है, लगाव तो है। ये गांठ कब बांधी गई पता नहीं। और दिनचर्या में ऐसी कौन सी बातें हैं जो उसको पुष्ट करती है, ये है साक्षी का पांचवा द्वार, अपनी दिनचर्या को देखना। इसका अभ्यास हम अभी करेंगे। आज सुबह यहां की जो दिनचर्या थी, सुबह से रात तक याद करना बहुत आसान है, परंतु उल्टा याद करना है। क्या करेंगे? उल्टा याद करेंगे, पीछे पीछे पीछे। अभी बजा है 9:30, पीछे जाएंगे हम सभी स्थिर। आठ से नौ बजे मैं क्या कर रहा था, क्या कर रही थी, क्या याद था उस समय कि तपस्या के लिए आए, क्या संपूर्ण मौन अवस्था थी, छह से सात। क्लासेस सुन रहे थे पर कुछ याद है, क्या था उनमें, पांच से छह तीन से पांच के बीच क्या चल रहा था। बारह से तीन एक सरसरी नजर, दस से बारह प्रतिक्रमण की ये प्रक्रिया है, और पीछे आठ से दस और पीछे सात से आठ। कौन मुरली सुना रहा था, कौन सी पॉइंट्स थी, और पीछे अमृत वेला। रोज अपनी दिनचर्या को उलट क्रम में देखना है। देखते 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 कुछ ऐसा दिख जाएगा अचानक कि जो आज तक दिखा नहीं था। और यही तो तपस्या है, कुछ ऐसा पकड़ में आएगा जो आज तक पकड़ में ही नहीं आया था, कुछ ऐसी गांठें खुल जाएगी जो आज तक खुली ही नहीं थी। साक्षी का छठवां द्वार, अपने जीवन में हुई सारी घटनाओं को देख लेना, बचपन से लेकर आज तक क्या हुआ, कब कब विकार में चले गए, कब कब विकारों से बाहर निकले, कब कब तपस्याएं की, कब कब अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हुआ, कब कब ऐसा विघ्न आया कि नीचे गिर गए, कब कब बीमारियां आई और बीमारी के समय क्या अवस्था थी। सारी घटनाओं को देखना, कितना मौन चाहिए। हमें याद है हमारे अपने जीवन में जब हम इस ज्ञान में नहीं थे, 6 मास तक एक ऐसा मौन था, एक ऐसा मौन जिसमें एक शब्द भी हमने अपने मुख से नहीं बोला था। और क्या अनुभव, जो सोचते थे जो होने वाला है वो जैसे पहले पता चल जाता था ऐसे होने वाला है, सन्नाटा जैसे, ऐसा मौन। 15 डेज थे MBBS के बाद। उस 15 दिनों में हमें ऐसा लगा था हम किसी चट्टान पर जाकर बैठे हैं, और उस 15 दिनों में हमने अपनी पूरी जीवन कहानी लिख के रखी, बचपन से लेकर जब हमारी उम्र थी 22 साल तब तक की सारी जीवन कहानी, क्या क्या हुआ। जहाँ तक हमको याद आता है ऐसी अवस्था थी कंसंट्रेशन की, इतनी डेप्थ कि जैसे इतनी ऊंचाई पर बैठकर सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, नहीं तो हमेशा धुंधला धुंधला रहता है, और स्पष्ट दिखाई दिया ये मार्ग इधर जा रहा है, ये संसार की ओर, ये संसार का मार्ग मेरा मार्ग नहीं है, मेरा मार्ग तपस्या का है। जैसे दिखाई देने लगे पिछले जन्मों का कुछ कुछ तपस्वी, कोई ऋषि बैठा है तपस्या करते हुए, और हमें लगा कि ये सब मैं हूं ही नहीं, मैं तो तपस्वी हूं, एक ऋषि हूं। इतना स्पष्ट अपने जीवन की सारी घटनाओं को देख लेना। फिर से अधिष्ठान, ट्रिपल लॉक, इस अभ्यास को तो करना ही है, रोज इस अभ्यास को बढ़ाते बढ़ाते 1 घंटा तक ले जाना है, 1 घंटा बिल्कुल हिले ही नहीं, इतना स्थिर, इतना अचल, जिसमें हम अपने जीवन का, बाबा कहते हैं 5 साल तक याद रहता है, 5 साल के पहले का याद नहीं रहता है, बहुत मुश्किल है, पीछे पीछे जाओ या तो पीछे से आगे आ जाओ, देखो कहाँ तक हम जा सकते, कहाँ जन्म हुआ था, कौन माँ बाप थे, कौन सा घर था, कौन से भाई बहन थे, स्कूल क्या थी, क्योंकि हमारे वर्तमान की समस्याओं का जड़ कहीं कहीं वहाँ है। अभी जो शरीर की बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है उसका बीज वहाँ बोया गया है बचपन में। एक पेशेंट आई थी कभी जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे कंटिन्यूस, ऐसे 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 नॉन स्टॉप 1-1 घंटा तक, सारी जांचें कराई कहीं कुछ नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है क्या है ये बीमारी। उसका बहुत डीप काउंसलिंग चला और बाद में पता चला फिजिकल अब्यूज, चाइल्ड अब्यूज हुआ था बचपन में उसके कजिन के द्वारा, और वो दब गई थी बात, वो दब के फिर अभी बाहर निकली थी, और जो निकली बाहर वो साइकोसोमैटिक इलनेस के रूप में निकली, झटके आना कुछ कुछ और किसी रिपोर्ट में कुछ नहीं, क्योंकि बीमारी की जड़ वहां थी, उसको वहां जब तक खोलेंगे नहीं ये ठीक होने वाला नहीं है। इस संसार की कोई भी डॉक्टर, कोई भी उसको ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि बीमारी यहाँ है अंदर। स्थिर अलर्ट बैठेंगे, अपने बचपन में चले जाए, कहां से याद आ रहा है साक्षी, कुछ लोग थे शायद उनके वजह से बहुत डिस्टर्बेंस हुआ, साक्षी ना घृणा ना लगाव, केवल देख रहा हूं वो घर, वो माँ बाप, वो भाई बहन, वो स्कूल, वो दोस्त, सब कुछ। और आगे कॉलेज लाइफ, वो कॉलेज, वो दोस्त, वो इच्छाएं, वो अभिप्साएं, वो आकर्षण। और आगे जॉब, करियर, सेवा केंद्र समर्पित जीवन, गृहस्थ जीवन, बच्चे, सेवाएं, संसार का जंजाल, जो जहां है उसे वो देखना है। वर्तमान समय, रहने का स्थान, सेवा साथी, घर के लोग, वर्तमान पुरुषार्थ, विघ्न जो आए, ओम शांति। लास्ट द्वार साक्षी का, इस संपूर्ण सृष्टि चक्र को देखना, अर्थात इसमें अपने पांच स्वरूपों को देखना। अनादि स्वरूप, आदि अनादि स्वरूप, परम धाम चमकता सितारा बाप के साथ। नीचे उतरा सतयुग में, सर्वगुण संपन्न, सर्व प्राप्ति संपन्न, पिछले इस अवतरण के पिछले अवतरण की मुरली, प्रकृति सतोगुणी, आगे द्वापर, जैसी कायदे अनुसार हमारी पूजा होती है और किसी की नहीं होती है, और आगे संगम युग। अपने इस रूप को भी देखना, ये भी मैं ही हूं, फरिश्ता रूप जो आकाश में विचरण कर रहा है, पर इसको भी संपूर्ण साक्षी होकर देखना, कैसे ज्योतिर्मयी आत्मा ऊपर है, वहां से कैसे नीचे आती है, कैसे मैंने रूप धारण किया। द्वापर और नीचे ये संगम, वो कौन सा पल था जब भगवान से मिलन हुआ। हाँ, यही वो पल गीत में सुना, जब धुन कोई मीठी सी, वो पल जब फकीर को खुदा मिल जाए, वो पल, बस इन दैट मोमेंट वॉज द इटर्निटी। उस पल में एक सदी छिपी थी, वो पल जो बाबा के पास आए थे, वो पल कैसा था, बैठे थे और क्या हो गया था, वो पल जब भगवान का कोई पहली बार इस यज्ञ का गीत सुना था, भगवान हमारा साथी है, और कैसे आंखों से झरझर झरझर मोती चरे थे, बस वो पल, उस पल के आगे सब कुछ गौन है। उसी पल को यहां खोजना है, इस भट्टी में, ऐसा मौन, ऐसी शांतता, ऐसा मन स्थिर, ऐसा अभ्यास कि अचानक से वो पल आएगा और उस पल की जो स्मृति है वो लंबा समय चलेगी। बाकी कितने क्लासेस सुने वो सब भूल जाता है, कितनी नोट्स निकाले, कितने ऑडियोस, सब बुद्धि विलास, सब वाणी विलास, जो साथ लेकर जाएंगे वो किसी एक पल का अनुभव, दैट्स इट। तो सभी अभी सोने के लिए जाएंगे, तो जिसको जहां बात करनी है घर पे कर ले, उसके बाद में मोबाइल स्विच ऑफ, और जिसको नहीं करना है तो क्या करें, कम से कम दूसरों के ऑपरेशन को डिस्टर्ब ना करें। फिर से लास्ट टाइम अलर्ट होके बैठेंगे, और ये अभ्यास रात को सोते समय कर सकते हैं। लेट गए हैं, लेटते समय मैं आत्मा परम धाम, हे निंदिया आचा, और वो करते 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 सो जाना। ओम शांति।
आने वाले रातों को चुपके से आ जा रे, निंदिया रे अखियों में समा जा रे निंदिया रे निंदिया रे निंदिया रे निंदिया रे कहीं दूर सितारों पे चंदा के इशारों पे पलने को तेरे जो परियों ने झुलाया रे निंदिया रे निंदिया रे निंदिया रे निंदिया रे निंदिया